अध्याय एक, विश्वासियों के प्रतिफल के विषय में दर्शन। मेरा प्रथम दर्शन। जब मैं पारिवारिक वेदी पर प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया और ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अंधेरे संसार से ऊपर उठती जा रही हूं। मैंने एडवेंटिस्ट लोगों को पृथ्वी पर देखने के लिए निगाह फेरी, परंतु उनको न पा सकी। उसी समय एक आवाज ने मुझसे कहा, फिर से निगाह करो और थोड़ा ऊंचाई पर देखो। इस पर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखती हूं कि एक सीधा सकरा मार्ग पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है। इस मार्ग पर आगमन के लोग उस नगर की ओर यात्रा करते हुए जा रहे थे जो मार्ग के दूसरे छोर पर था। मार्ग के आरंभ में उनके पीछे एक बड़ी मशाल जल रही थी जो दूत के कहने के अनुसार आधी रात को धूम कहलाती थी। वह मशाल रास्ते पर चमकती और उनके पांवों को उजाला देती रही ताकि उन्हें ठोकर न लगे। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर जमाए रखते जो उनके सामने ही था और नगर की ओर उनका मार्गदर्शन कर रहा था तो वे सुरक्षित रहते। परंतु शीघ्र ही कुछ तो थक गए और कहने लगे कि नगर तो अभी बहुत दूर है और अब तक तो हम पहुंच भी गए होते। ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की। तब यीशु ने अपनी विशाल दाहिनी भुजा को उठाकर उनको प्रोत्साहन दिया, जिसमें से एक प्रकाश निकला जो एडवेंट दल के ऊपर चमका और वे हल्लेलुया के नारे लगाने लगे। अन्यों ने जल्दबाजी में अपने पीछे के प्रकाश का इनकार किया और कहने लगे कि इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है जो इतनी दूर तक चले भी आए। अतः उनके पीछे की रोशनी बुझ गई और उनके पांव निपट अंधेरे में पड़ गए और ठोकर खाकर निशाने और यीशु से ओझल हो गए और मार्ग से नीचे अंधेरे और पापी संसार में गिर गए। तुरंत ही हमने परमेश्वर की आवाज बहुत से जल की तरह गूंजती सुनी, जिससे हमें यीशु के आगमन के दिन तथा घड़ी का पता लग गया। जीवित पवित्र जन, जिनकी गिनती 144,000 थी, उस आवाज को समझते गए, जबकि दुष्टों ने बादल की गरज और भूइंडोल ही समझा। और जब परमेश्वर ने समय को बतलाया तो हम पर अपना पवित्र आत्मा उंडेला और हमारे चेहरे परमेश्वर की महिमा से दमकने लगे, जिस प्रकार मूसा का मुख दमकता था जब वो सीने पर्वत से उतरा था। 144,000 व्यक्तियों पर छाप लग चुकी थी और वे पूर्णतः संयुक्त थे। उनके माथों पर परमेश्वर, नया यरूशलेम और प्रतापी तारा, जिसमें यीशु का नया नाम था, लिखा हुआ था। हमारी सौभाग्यशाली व पवित्र स्थिति को देख दुष्ट लोग क्रोधित होकर बलापूर्वक हमारी ओर झपटे कि पकड़कर हमें बंदी गृह में डालें। परंतु हमने परमेश्वर का नाम लेकर हाथ फैलाया और वे लाचार होकर भूमि पर गिर पड़े। तब शैतान के अनुयायियों ने जान लिया कि परमेश्वर इनसे प्रेम रखता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पांव धोते और भाइयों को पवित्र चुंबन द्वारा प्रणाम करते हैं। वे हमारे चरणों को छूकर आदर करने लगे। शीघ्र ही हमारी आंखें पूर्व दिशा की ओर आकर्षित हुईं, जहां एक छोटा काला बादल मनुष्य के हाथ के बराबर प्रकट हुआ, जिसे हम सब समझते थे कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह है। गंभीर खामोशी में हम निकट आते हुए बादल को ताकते रहे, जिसका तेज बढ़ता गया, यहां तक कि वह सफेद बादल बन गया। उसका निचला भाग अग्नि स्वरूप था। मेघ के ऊपर इंद्रधनुष था, जिसके इर्द गिर्द हजारों दूत सुरेले राग का मनोहर गीत गा रहे थे, और उस मेघ पर मनुष्य का पुत्र विराजमान था। उसके सफेद घुंघराले बाल कंधों तक फैले हुए थे, जिसके सिर पर अनेक मुकुट धरे थे। उसके पांव अग्नि सदृश थे, उसके दाहिने हाथ में तेज हसुआ और बाएं में रुपहली तुरही थी। उसकी आंखें अग्नि ज्वाला की नाई थीं, जो अपनी संतान का पूर्ण रीति से निरीक्षण करती थी। तब सकल चेहरों का वर्ण पीला हो गया, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने रद्द कर दिया था उनका वर्ण श्याम पड़ने लगा। हम सब चिल्ला उठे, अब कौन ठहर सकता है? क्या मेरा वस्त्र निर्मल है? तब स्वर्गदूतों ने गाना बंद कर दिया और कुछ समय लो अपूर्व सन्नाटा छा गया। फिर यीशु बोल उठा, जिनके हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं वे ही ठहरने योग्य होंगे। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इस बात पर हमारे चेहरे दमकने लगे और हृदय प्रसन्नता से भर गए। अब दूतों ने ऊंचे स्वर में एक राग छेड़ा। इतने में वह मेघ पृथ्वी के और भी निकट आ गया। फिर यीशु की रुपहली तुरही गूंज उठी, जब वह अग्नि की ज्वाला में लिपटे हुए मेघ में उतर रहा था। उसने सोते हुए पवित्र जनों की कब्रों पर निगाह डाली, फिर आंखें और हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर पुकारा, जागो जागो, तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, उठो। इस पर एक भीषण भुइंडोल आया, कब्रें खुल गईं और मुर्दे अमृत्व का चोला धारण किए हुए निकल आए। 144,000 जन हल्लेलुया शब्द पुकारने लगे। जब उन्होंने मृत्यु द्वारा छीने गए मित्रों को पहचाना और उसी क्षण में हम बदल गए और प्रभु को मिलने के लिए उनके साथ हवा में उठा लिए गए, हम सभी ने साथ साथ मेघ में प्रवेश किया और कांच के समुद्र तक पहुंचने में हमें 7 दिन लगे। तब यीशु ने मुकुटों को अपने दाहिने हाथ से हमारे सिरों पर रखा। उसने हमें सोने की वीणा और विजय रूपी खजूर की डालियां दी। कांच के समुद्र पर 144,000 जन वर्गाकार शक्ल में खड़े हुए। कुछ के तो अति चमकीले मुकुट थे, दूसरों के इतने चमकीले न थे। कुछ मुकुट तारों के कारण भारी नजर आते थे, परंतु अन्यों पर थोड़े ही तारे थे। परंतु प्रत्येक अपने मुकुट से अत्यंत संतुष्ट था, और वे सब के सब एक शानदार सफेद चादर कंधों से पांवों तक ओढ़े हुए थे। हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का वृंद था। जब हम कांच के समुद्र से गुजरते हुए नगर के द्वार की ओर जा रहे थे, तब यीशु ने अपनी चक्रवर्ती पराक्रमी भुजा से मोतियों के फाटक को पकड़ा और उसके चमकते हुए कब्जों पर पीछे को हटा दिया और हमसे कहा, तुम लोगों ने अपने अपने वस्त्र मेरे लोहू में स्वच्छ किए हैं, मेरे सत्य पर दृढ़ता से अटल रहे हो, अब उसमें प्रवेश करो। हम सब अंदर गए और वहां जाकर महसूस किया कि नगर में हमें पूरा पूरा अधिकार है। यहां हमने जीवन का वृक्ष तथा परमेश्वर का सिंहासन देखा। सिंहासन से एक निर्मल जल की नदी निकलती है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है। वृक्ष का एक तना तो नदी की एक ओर और दूसरा दूसरी ओर था। दोनों पारदर्शक सोने के थे। प्रथम मैं समझती थी कि मैं दो पेड़ देख रही हूं। मैंने फिर निगाह की और क्या देखती हूं कि वे चोटी पर संयुक्त हो गए हैं। सो जीवन का वृक्ष जीवन की नदी के दोनों ओर स्थित था। उस पेड़ की डालियां वहां तक झुकी हुई थीं जहां हम खड़े थे। फल भी शानदार था, ऐसा लगता था कि मानो सोने चांदी का मिश्रण हो। हम सब वृक्ष के नीचे बैठकर उस स्थान का वैभव देखने लगे तो क्या देखते हैं कि भाई फीचे और स्फाकमन, जिन्होंने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया था परंतु जिन्हें परमेश्वर ने बचाने के हेतु कब्र में रख दिया था, वे हमारे पास आकर पूछने लगे, जब हम सो रहे थे तो उस समय तुम्हारे ऊपर क्या क्या गुजरी? हमने अपने भीषण क्लेशों को स्मरण करने की कोशिश की, परंतु वे उस अत्यधिक वरन महिमा की अनंत शान के सामने जो हमें घेरे हुए थी इतने लघु प्रतीत थे कि हम उनका नाम तक मुंह पर न ला सके। और हम सब के सब बोल उठे, हल्लेलुया। स्वर्ग बहुत सस्ता है। फिर तेजस्वी वीणा लेकर हमने उसकी ध्वनि से स्वर्ग के गुंबद को गुंजा दिया। यीशु के नेतृत्व में हम सब उस नगर से इस पृथ्वी की ओर एक बड़े पर्वत पर बैठकर उतरे, जो यीशु को उठा नहीं सकता था, और वह पर्वत दो भाग हो गया और एक विस्तृत मैदान बन गया। फिर हमने ऊपर की ओर निगाह की और उस विशाल नगर को देखा जिसकी 12 नींवें और 12 फाटक थे, प्रत्येक दिशा में 3-3 फाटक और प्रत्येक फाटक पर 1-1 दूत खड़ा था। हम सब के सब पुकार उठे, वह नगर, वह अनुपम नगर स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर रहा और आकर वहां स्थिर हो गया जहां हम लोग खड़े थे। तत्पश्चात हम नगर के बाहर को और वैभवशाली वस्तुओं को देखने लगे। फिर मैंने सबसे अधिक महिमापूर्ण हवेलियों को देखा, जिनकी शक्ल रुपहली थी, जिनको मोती जड़ित 4 स्तंभ संभाले हुए थे। ये पवित्र जनों के निवास स्थान थे, जिनमें प्रत्येक में एक सुनहली ताक थी। मैंने अनेक भक्तों को उन मकानों में जाते और अपने भड़कीले मुकुटों को उतारकर ताक में रखते देखा। फिर घरों के पास खेतों में जाकर उन्हें काम करते देखा। इस प्रकार का काम नहीं जैसा हम करते हैं, नहीं नहीं, उनके सिरों के इर्द गिर्द एक तेजस्वी प्रकाश चमकता था और वे निरंतर परमेश्वर को पुकार कर गुणानुवाद करते थे। मैंने एक और खेत नाना प्रकार के फूलों से भरा हुआ देखा और ज्यों ही मैंने उन्हें तोड़ा मैं चिल्ला उठी, ये कभी नहीं मुरझाएंगे। फिर मैंने एक खेत देखा जिसमें ऊंची ऊंची घास थी और देखने में सुहावनी थी, उसको सदाबहार की हरियाली थी और सुनहले और रुपहले दोनों रंगों की झलक लिए हुए थी। और खेत में दाखिल हुए जिसमें नाना प्रकार के जंतु थे, सिंह, मेमना, चीता, भेड़िया, ये सब मेलजोल से रहते थे। हम उनके बीच में से गुजरे और वे शांतिपूर्वक पीछे पीछे हो लिए। तदनंतर हम एक वन में गए जो उन अंधेरे वनों की भांति न था जो हमारे आसपास हुआ करते हैं, नहीं नहीं, परंतु प्रकाशमान और अत्यंत सुंदर था। पेड़ों की डालियां हिलती थीं, हम चिल्ला उठे, हम वन में निडर होकर रहेंगे तथा सोएंगे। हम वन में से होकर निकले क्योंकि हम सियोन की ओर जा रहे थे। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमें एक दल मिला जो उस स्थान के सौंदर्य को देख रहा था। मैंने उनके वस्त्र की किनारी लाल देखी, उनके मुकुट भड़कीले और वस्त्र बिल्कुल सफेद थे। जब हम उनसे मिले तो मैंने यीशु से पूछा, ये लोग कौन हैं? उसने कहा, ये वे शहीद हैं जो मेरी खातिर वध किए गए थे। उनके साथ बालकों की एक बड़ी संख्या थी, उनके वस्त्र की किनारी भी लाल थी। सियोन पर्वत हमारे सामने आ गया। उस पर्वत पर एक शोभायमान मंदिर था जिसके इर्द गिर्द सात और पर्वत थे जो गुलाब तथा सोसन के फूलों से सुसज्जित थे। मैंने बालकों को पर्वत पर या तो पैदल चढ़ते या अपने पंखों से उड़कर उसकी चोटी तक पहुंचते और ना कुम्हलाने वाले फूलों को तोड़ते देखा। मंदिर की शोभा बढ़ाने को उसके चारों ओर सब प्रकार के पेड़ थे, बबूल, चीड़, सनोवर, जलपाई, मेहंदी, अनार आदि। अंजीर का वृक्ष सामयिक फलों के वजन से झुका जा रहा था। इन सबों से वह स्थान शोभायमान दिखाई दे रहा था। जब हम पवित्र मंदिर में प्रवेश करने जा रहे थे तो यीशु ने मधुर वाणी से कहा, इसमें 144,000 ही प्रवेश कर सकते हैं। और हमने हलीलुया के नारे लगाए। इस मंदिर को सात स्तंभ संभाले हुए थे जो पारदर्शक स्वर्ण के बने हुए थे और अति सुंदर मोतियां से जड़े हुए थे। जो अद्भुत बातें मैंने वहां देखी वे वर्णन से बाहर हैं। कितना अच्छा होता यदि मैं कनान की भाषा बोल सकती, तब मैं उस श्रेष्ठ लोक की महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर पाती। वहां जो मैंने पत्थर की पट्टियां देखी जिन पर 144,000 का नाम सुनहले अक्षरों में खुदा हुआ है। मंदिर का वैभव देखने के पश्चात हम बाहर चले आए और यीशु भी हमें छोड़कर नगर को लौट गया। शीघ्र ही हमने उसकी प्यारी आवाज यह कहते सुनी, मेरे प्यारे लोगों, आओ, तुम भीषण क्लेशों में से निकल कर आए हो। मेरी इच्छा को तुमने पूरा किया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे साथ संध्या के भोजन में बैठी, मैं कमर बांधकर तुम्हारी सेवा करूंगा। हम चिल्लाकर बोले, हलीलुया, जय हो, और नगर में प्रवेश किया। और मैंने खालिस चांदी की एक मेज देखी जो मीलों लंबी थी। फिर हमारी आंखें उसके विस्तार को देख सकती थीं। मैंने जीवन के वृक्ष का फल देखा, मन्ना, बादाम, अंजीर, अनार, अंगूर तथा नाना प्रकार के फल देखे। मैंने यीशु से प्रार्थना की कि मुझे फल खाने की आज्ञा दीजिए। उसने कहा, अभी नहीं, जो इस देश का फल खा लेते हैं वे फिर मृत्यु लोक को वापस नहीं जाते हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद यदि विश्वास योग्य रहो तो तुम जीवन के वृक्ष का फल खाओगी और चश्मे का पानी पियोगी। और उसने कहा, तुमको फिर पृथ्वी पर लौटकर उन बातों का वर्णन करना होगा जो मैंने तुमको दिखाई हैं। तब एक दूत मुझको आहिस्ते से इस अंधकार जगत में ले आया। कभी कभी मैं सोचती हूं कि इस संसार में और अधिक देर तक नहीं रह सकती, इस पृथ्वी की सब वस्तुएं भयंकर मालूम देती हैं। मुझे यहां सुनसान लगता है क्योंकि मैंने उत्तम लोक देख लिया है। काश मेरे कबूतर की तरह पंख होते, तब उड़कर विश्राम पाती।